शहर की ओर, जब चले शहर की ओर।
नमस्कार दोस्तों, जब चलें शहर की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र तिवारी।
और मैं हूं अंजलि जोशी।
दोस्तों, क्या आपने कभी पैसे बचाने के बारे में सोचा है?
ये कैसा सवाल है? अरे भाई, पैसे बचाना किसे अच्छा नहीं लगता।
अंजलि, तुम भी बचत के बारे में सोचती हो? भाई जोक अच्छा है।
नरेंद्र, ये कोई जोक नहीं है, मैं सचमुच बचत करके चलती हूँ।
चलो भाई, मान लिया कि अंजलि बचत करना जानती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बचत नहीं करते हैं तो आज से ही बचत करना शुरू कर दीजिए।
जी हाँ, क्योंकि आज के एपिसोड में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, बचत क्यों करनी चाहिए और हम अपने पसीने की कमाई का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।
लेकिन इससे पहले कि हम इन बातों पर चर्चा करें, हम आपको बता दें कि कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियोसिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अच्छा अंजलि, वैसे आज हमारे कार्यक्रम की कौन सी कड़ी है?
30वीं कड़ी।
मतलब हमारा धारावाहिक शहर की ओर भी अपने 30 एपिसोड पूरे कर चुका है।
बिल्कुल नरेन, और इन 30 हफ्तों में चंदर की जिंदगी में काफी कुछ बदल गया है।
वैसे आजकल चल क्या रहा है चंदर की जिंदगी में,
ये जानने के लिए चलो सुनते हैं धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना, रेस्टोरेंट में खाने की जाँच के लिए एक फूड इंस्पेक्टर आता है। चंदर की समझदारी की वजह से फूड इंस्पेक्टर रेस्टोरेंट के खाने को पास कर देता है, जिससे मैनेजर खुश होकर चंदर का प्रमोशन कर देता है। उधर गांव में मीरा की सास फूलमती प्रसव के कुछ दिनों बाद ही उसे खेतों पर काम करने के लिए कहती है। मधु फूलमती को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे डांट देती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
गुड़िया, टीवी की आवाज कम करो। हाँ चंदर, अब बताओ क्या बात है।
कल्पना, पहले तो ये रखो, तुम्हारे 200 रुपए।
अरे चंदर, इतनी जल्दी भी क्या थी?
अरे भाई, बाद में देना या अभी देना, बात तो एक ही है। और ये कुछ खिलौने और कपड़े हैं गुड़िया के लिए।
अरे चंदर, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी?
अरे बस ऐसे ही, मेरा दिल किया तो मैं ले आया।
नहीं चंदर, फिर भी अच्छा नहीं लगता। तुम गुड़िया के लिए इतना खर्च मत किया करो, तुम्हारा भी गांव में घर है।
क्या कल्पना, तुम भी। अच्छा एक काम करो, इन चीजों को मेरी तरफ से गुड़िया के लिए नए साल का तोहफा समझ लो।
अच्छा बाबा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम खुद ही उसे ये सब दे दो, उसे अच्छा लगेगा। गुड़िया, देखो बेटा, अंकल तुम्हारे लिए क्या लाए हैं।
अंकल, मेरे लिए आप क्या लाए हो?
हम अपनी गुड़िया बेटी के लिए नए खिलौने और कपड़े लाए हैं।
ये सब मेरे लिए?
हाँ।
और ये नए कपड़े?
ये भी आपके लिए है।
सच? थैंक यू अंकल। मम्मी, आपके हाथ में पैसे, मतलब कल स्कूल की फीस चली जाएगी और मैं दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दूंगी।
चुप कर गुड़िया, चलो अंदर जाकर खेलो।
कल्पना, ये गुड़िया क्या कह रही है?
अरे कुछ नहीं चंदर, इस बार सिलाई के ऑर्डर के पैसे थोड़े लेट हो गए, इसलिए गुड़िया की स्कूल की फीस टाइम पर नहीं भर पाई और स्कूल वालों ने गुड़िया को स्कूल आने से ही मना कर दिया।
और तब भी तुम अपने पैसे लेने से मना कर रही थी?
वो क्या है ना चंदर, मुझे लगा कि तुम्हारी नई नई नौकरी लगी है और तुम काफी परेशान भी थे, तो मैं अपनी परेशानी तुम पर थोपना नहीं चाहती थी। खैर, इस बात को छोड़ो और ये बताओ कि तुमने अपने घर वालों को पैसे भेजे या नहीं।
नहीं, अभी तो नहीं।
चंदर, नए साल का मौका है, सब घर पर पैसों का इंतजार कर रहे होंगे।
उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं घर पर पैसे भेज दूंगा। लो, पहले तुम ये 500 रुपए और रखो।
पर चंदर, मैं ये पैसे कैसे ले सकती हूँ?
देखो, जब मुझे पैसों की जरूरत थी तब तुमने मेरी मदद की थी ना।
वो तो ठीक है, पर
तो अब जब तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि तुम्हारी कुछ मदद करूं। तुम इन पैसों से गुड़िया की फीस भर देना।
लेकिन चंदर।
अरे जब तुम्हारे सिलाई के पैसे आ जाए तो लौटा देना।
ठीक है, रख लेती हूँ, लेकिन सिर्फ उधार समझकर।
ठीक है बाबा।
माँ, माँ।
अरे क्यों माँ माँ चिल्ला रहा है, कहीं भूत देखकर आ रहा है क्या? और ये बैग किसका है?
पिताजी, भूत नहीं, कविता दीदी को देखकर आ रहा हूँ, वो घर आ रही है।
क्या, कविता दीदी घर आ रही है?
हाँ सुषमा दीदी, कविता दीदी बिल्कुल वैसी की वैसी है। और तो और, दीदी ने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, मैं वापस उन्हें लेने जा रहा हूँ।
माँ, सुना तुमने, कविता दीदी घर आ रही है?
हाँ सुषमा, सुन लिया, मेरी कविता घर आ रही है।
लेकिन अब वो यहाँ क्या लेने आ रही है? सब कुछ पहले ही अपने साथ ले गई, हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान, सब कुछ।
देखिए जी, लड़की बहुत दिनों के बाद आ रही है, आपको मेरी कसम, आते ही कविता से कुछ न कहिएगा।
नहीं माँ, कह लेने दीजिए पिताजी को, जो भी कुछ वो कहना चाहते हैं।
कविता दीदी।
हाँ माँ, आज पिताजी को कह ही लेने दो। मुझे भी तो पता चले कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया जिसके लिए मुझसे ये इतनी नफरत करते हैं।
सुनिए जी, मैं आपको सब बताती हूँ, अब गुस्सा मत कीजिएगा।
अरे सुषमा की माँ, तुम क्या बताओगी जब मैं अपनी आँखों से खुद देख रहा हूँ इसकी बेशर्मी को। हम सबके मुंह पर कालिक पोतकर एक पराये लड़के के साथ भागने के बाद ये पूछ रही है कि इसने कौन सा अपराध किया है।
मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके लिए मुझे या हमारे परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। पिताजी, ये सच है कि मैंने बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़ा, लेकिन शोभन के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है।
अच्छा, तो अब शोभन के साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं रहा?
नहीं पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। आप लोगों ने मेरी शादी पक्की कर दी थी, जबकि मैं आगे पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैंने घर छोड़ा। और शोभन ने बस दिल्ली तक पहुँचने में मेरी मदद की थी, उसके बाद वो दुबई चला गया और फिर मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई।
अच्छा, तेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई? उसने तुझे सिर्फ दिल्ली तक छोड़ा था? तो फिर इतने दिन कहाँ रही, किसके साथ रही और किया क्या तूने?
इतने दिन मैं अपने सपने के पीछे भागती रही। और पिताजी, आज मेरा सपना पूरा हो गया, तो देखिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आज मैं एक अच्छी नौकरी करती हूँ, खुद कमाती हूँ, अपने परिवार को सहारा दे सकती हूँ जैसे कि बेटा देता है। अगर एक बेटे का अपने पैरों पर खड़े होना गलत है तो मैंने गलती की है। अगर एक बेटे का एक बेटे की तरह अपने परिवार को सहारा देना गलत है तो मैंने गलत किया है। अगर एक बेटे का अपने छोटे भाई बहनों के बेहतर भविष्य के बारे में सोचना गलत है तो मैंने गलती की है। मैंने गलती की है पिताजी, मैं आप सबकी अपराधी हूँ, मुझे सजा दीजिए पिताजी, मुझे मेरी गलती की सजा बताओ।
कविता मेरा बेटा, ऐसे मत रो, शायद गलती मेरी ही थी जो मैं तुझे समझ नहीं सका। और ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गुनहगार हैं गांव के वो लोग जिसमें वो अपनी बेटी को बेटे से कम समझने की गलती करते हैं और उनकी इच्छाओं का गला घोट देते हैं और समय से पहले ही उनकी शादी कर देते हैं। आज से तू मेरी बेटी नहीं, बेटा है, बेटा।
ओ पिताजी, ओ पिताजी।
दीदी, आपने तो बम्बई में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान सभी हीरो को देखा होगा। और हाँ दीदी, मैंने सुना है वहाँ बहुत बड़ा समुद्र भी है, आपने तो वो भी देखा होगा।
हाँ हाँ, सब कुछ देखा है मैंने, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और समुद्र भी। अच्छा सुषमा, तुझे नए साल पर क्या चाहिए?
दीदी आप आ गए हो, हमारे लिए यही बहुत है।
पगली, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, चल बता क्या चाहिए तुझे।
अच्छा तो ठीक है, आपने जो सूट पहना हुआ है ना, मुझे भी ऐसा ही एक सूट चाहिए।
ऐसा तो नहीं, पर मैं तुझे इससे भी सुंदर सूट दिलवाऊंगी।
सच दीदी?
बिल्कुल सच।
सुषमा, सुषमा, अरे हो कि नहीं?
अरे मधु बाजी, अंदर आ जाइए।
कैसी हो?
ठीक हूँ, आइए बैठिए। दीदी ये मधु बाजी हैं, वो जो चंदर भैजी है ना, उनकी बुआरी। और बाजी ये मेरी कविता दीदी।
ओ अच्छा, नमस्ते।
नमस्ते।
आपके बारे में बहुत सुना था, ये सुषमा तो आपकी हमेशा तारीफ ही करती रहती है।
बाजी कुछ काम था क्या?
नहीं कुछ खास नहीं, बस यही पता करने आई थी कि कोई फोन तो नहीं आया मेरे लिए।
नहीं दीदी, फोन तो कोई नहीं आया।
किसका फोन सुषमा?
वो चंदर भैजी दिल्ली में है ना, तो बाजी उन्हीं के फोन का इंतजार करती रहती है।
ओह अच्छा, वैसे मधु तुम करती क्या हो?
अभी तो फिलहाल जूस बनाने का काम कर रही हूँ।
अरे दीदी आपको पता है, मधु बाजी ने 12वीं तक पढ़ाई की है और पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी।
अच्छा,
और दीदी ये भी आपकी तरह आगे पढ़ना चाहती हैं, पर दीदी वो जो घर बैठकर पढ़ाई करते हैं ना।
तुम्हारा मतलब है डिस्टेंस एजुकेशन?
हाँ वही वही, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है।
मधु क्या तुम सच में आगे पढ़ना चाहती हो?
हाँ पढ़ना तो चाहती हूँ, उनको बोला था कि इग्नू के बारे में पता करके बताइए, पर उनका कोई फोन ही नहीं आया।
तो क्या हुआ अगर उनका कोई फोन नहीं आया, तो मुझसे पूछ लो, मैं भी तो डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ।
सच?
लो मधु बाजी आपका काम तो हो गया, देखा मेरी दीदी के शहर जाने का फायदा।
कहाँ रखकर भूल गई बीजों को, अभी तो रखे थे, पता नहीं कहाँ गए।
अरे दीदी क्या ढूंढ रही हो?
देख ना मधु, मैं भी कितनी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। अभी माँ जी बीजों की थैली देकर गई थी, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। अरे हंस क्यों रही है?
हंसू नहीं तो और क्या करूँ दीदी, बीजों की थैली बिल्कुल आपके पैरों के पास में रखी है और आप हो कि उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही हो।
देखा मैंने कहा था ना कि मैं भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। वैसे एक बात कहूँ?
हाँ कहो।
जब तू खुश होती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
वैसे आज मेरे पास खुशी की खबर भी है।
वो क्या भला, चंदर की कोई खबर आई क्या?
उनकी तो अभी तक कोई खबर नहीं आई।
तो फिर?
खुशी की बात ये है दीदी कि घर बैठे मुझे आगे की पढ़ाई करने का मौका मिल गया है।
सच?
हाँ।
मगर कैसे?
वो जो अपनी सुषमा है ना?
हाँ हाँ।
उसकी जो बड़ी बहन है कविता, वो शहर से वापस आ गई है।
अच्छा।
और उन्होंने ही मुझे इग्नू के बारे में बताया, वो भी इग्नू से ही अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही है।
ये तो बहुत अच्छी बात है।
और तो और दीदी, मैं तो उनकी समझदारी और उनके बातचीत करने के ढंग को देखकर हैरान ही रह गई। और लोगों को देखो, उनके बारे में क्या क्या बात करते हैं।
वो तो है, पर क्या चाचा जी और चाची जी ने उसे माफ कर दिया?
अरे दीदी ना सिर्फ माफ कर दिया बल्कि उनकी समझ में ये भी आ गया कि उनकी बेटी ने कोई गलती नहीं की थी।
ये तो बहुत अच्छा हुआ।
एक दो तीन चार पाँच, हाँ ये हो गए 1,000 रुपए, इन्हें अलग रखता हूँ। और बच्चे हैं ये तो 200-350 रुपए, यानी कुल मिला के 1,350 रुपए।
गजेंद्र।
अरे चंदर। अरे आ यार, तुझसे कुछ बात करनी थी।
कोई जरूरी बात है क्या?
अरे हाँ यार जरूरी, समझ ले, बैठ तो सही।
बोल क्या बात है?
यार चंदर देख, भगवान की दया से आमदनी का जरिया सही बन गया है।
हाँ।
नौकरी भी अच्छी है और ऊपर से महीने में 1,200-1,500 रुपए टिपके भी बन जाते हैं।
तो
अरे यार इतने पैसे हर वक्त बैग में नहीं रख सकते है ना। देख तुझे तो पता ही है यार, साथ में और भी लड़के रहते हैं, तेरे अलावा मैं किसी पर भरोसा भी तो नहीं करता हूँ ना।
हाँ यार बात तो तू ठीक कह रहा है।
तो यार मैं सोच रहा था क्यों ना बैंक में खाता खुलवा लूँ।
गजेंद्र कह तो तू सही रहा यार, मुझे भी लगता है कि अब मुझे कुछ बचत करके चलना चाहिए, तभी कुछ पैसे जोड़ पाएंगे। एक काम करते हैं।
बोल।
जैसे इस बार की तनख्वाह हाथ में आती है, दोनों एक साथ एक ही बैंक में खाता खुलवा लेते हैं, क्यों?
ये बात सही है यार। लेकिन यार मैं सोच रहा था कि बचत शुरू करने से पहले थोड़ा सा खर्चा कर लिया जाए।
मतलब?
अरे मतलब क्या यार, बहुत दिन से कोई फिल्म नहीं देखी है।
यार गजेंद्र तूने मेरे मुंह की बात छीन ली यार, जब से दिल्ली में आया हूँ सिनेमा हॉल के अंदर तक नहीं घुसा।
क्या बात करता है, तो इसका मतलब पहले तुझे थोड़ी सी दिल्ली घुमानी पड़ेगी।
हाँ
चल फिर दिल्ली का कुतुब।
नरेंद्र जैसे हमारा चंदर बचत करने के बारे में सोचने लगा है, क्या ऐसे ही हमारे प्रवासी दोस्त भी पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं?
अंजलि क्यों ना ये बात प्रवासी दोस्तों से ही पूछी जाए।
तो आइए सुनते हैं पैसों के इस्तेमाल और बचत के बारे में उनका क्या कहना है।
मैं सबसे पहले अपने पैसों की बचत तो अपने एक तो घर परिवार बनाने के लिए करता हूँ, दूसरे की भविष्य में अपनी शादी होगी उसके लिए भी पैसे का बजट करना पड़ता है, और जैसे घर परिवार को देखना पड़ता है उसके लिए बचत करना पड़ता है। तो पैसे का बचत करने के लिए बैंकों में पैसे मैं जमा करता हूँ, तो जैसे कभी कोई चीज़ खरीदनी है तो फिर बैंक से पैसे निकालता हूँ, और फिर जब मेरे पास कभी कैसे पैसे आते हैं तो उसको फिर मैं जमा कर देता हूँ बैंक
में। हमारे गांव में हर महीने मीटिंग होती है, इसमें सारी औरतें इकट्ठे होकर 10-10 रुपये जमा करती हैं और एक जो अध्यक्ष होती है उसके पास जमा करती हैं, फिर वो जाके बैंक में जमा कर देती हैं और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो उस पैसे को निकाल के उसमें यूज़ कर देती हैं।
पैसों की बचत कई तरीके से की जा सकती है, जैसे कि एक तो बैंक में सेव करके, दूसरा प्रॉपर्टी खरीद कर, और एक हो गया किसी बिजनेस के द्वारा। मैं जो अपना पैसा कमाता हूँ, जितना मंथली खर्च होता है उससे जो बचता है उसको बैंक में जो है सेव कर लेता हूँ। इस संघर्षरत जो है हमारा जो जीवन है, इसमें बिना पैसे का जो है कुछ भी नहीं है, और मेरे जीवन में बिना पैसे कोई रुकावट ना बने इसलिए मैं अपने पैसे को सेव करता हूँ।
वो असल में कभी हमारे पास पैसा नहीं होता है तो अपनी छोटी छोटी जैसे गांव में खेती वगैरह करते हैं तो उसका पैसा बचा के जो स्वयं सहायता समूह होते हैं गांव में, तो उसमें कम से कम 20 महिलाओं का एक ग्रुप होता है और उसमें वो अपनी पैसे जमा करती हैं, 5 रुपये 10 रुपये इस हिसाब से वो जमा करती हैं, अपना लेन देन करते हैं, क्योंकि बाहर जाने में तो पैसा नहीं मिलता है, या किसी साहूकार के पास जाएंगे तो उससे उसके पास भी इतना पैसा नहीं मिल पाता है, और महिलाओं के पास जो पूंजी रहती है वो खुद ही अपना पैसा इकट्ठा करके और महिलाओं की सहमति से वो पैसा निकालती हैं और अपना माने कार्यक्रम को चलाती हैं घर का।
Thank you.
और अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो आपको बताएंगे कि हमारे प्रवासी दोस्त कैसे बचत कर सकते हैं, कैसे उस पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी संस्था इस सब में उनकी क्या मदद कर सकती है।
नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं कोऑर्डिनेटर ऑपरेशन हूँ आश्रय अधिकार अभियान का। आश्रय अधिकार अभियान एक ऐसी संस्था है जो शहर में पिछले 8 वर्षों से भी ज़्यादा समय से कार्य कर रही है। ये मूलतः वैसे लोगों के साथ काम करती है जो रोज़गार और बेहतर जीवन की तलाश में शहर में अन्य राज्यों से आए हुए होते हैं और किसी मजबूरी बस किसी कारण बस उनकी आमदनी इतनी नहीं होती है जिस कारण से वो सड़क पे अपने जीवन यापन को करते हैं। और जो मुख्य इम्पॉर्टेंट बात है, हम किस प्रकार से मानव अधिकारों को मजबूती के साथ जनता के समक्ष ला सकें, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सा हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जीवन हमारे और आपके जीवन के मुकाबले में बहुत कठिन और संघर्षमय जीवन है। इनके जीवन का जो नवीनीकरण हो रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो कैसे होगा, किसी भी व्यक्ति के जीवन में पैसा बहुत अहम रोल अदा करता है, तो इस वर्ग के लिए तो बचत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरी के साथ साथ समाज में सम्मान के साथ डिग्निटी के साथ जीवन जीने के लिए ये अनिवार्य शर्त भी है आज की डेट में। जहाँ तक इनके बचत योजना की बात है, पहले तो इनके आइडेंटिफिकेशन को लेकर बहुत परेशानी आई, खास करके बहुत सारे हमारे बेघर साथी ऐसे हैं जिनके पास पहचान के नाम पे कुछ भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से फिनो करके कंपनी है उसकी तरफ से जो सहयोग रहा, ये बहुत अद्वितीय सहयोग था, बहुत अनपैरल था। अगर कोई प्रवासी खास करके अगर बहुत पिछड़ा हुआ तबके स्थिति है तो वो तो हमारे साथ संपर्क में आ सकता है और हमारे कार्यकर्ता साथी लोग इस पूरे प्रक्रिया को उसके लिए सफल और सहज तरीके से बना के उसके बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि फिनेंशियल इंक्लूजन के तहत एक प्रक्रिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की है। उस प्रक्रिया के तहत बाकी जितने भी शेड्यूल बैंक हैं उन बैंकों को ये निर्गत किया गया है, निर्देशित किया गया है, ऐसे लोगों को भी अपने स्कीम के तहत जोड़े जो समाज के वीकर सेक्शन से आते हैं। तो ये स्कीम हर स्तर पे सहज है, थोड़ा सा उस व्यक्ति को अपने बारे में कॉन्फिडेंस के साथ बताने की आवश्यकता है।
नरेन, शहरों में तो बैंक होते हैं जहां लोग आसानी से अपने पैसों को जमा करके बचत कर सकते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में कई जगह ऐसी हैं जहां बैंक मौजूद नहीं है, तो ऐसे इलाकों में लोगों को बचत करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए?
अंजलि, एक काम करते हैं।
क्या?
ये सवाल भैजी से ही पूछते हैं।
तो ठीक है, बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाखपति की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार नरेन।
भैजी, आपके हाथ में बैंक की पासबुक, कहीं आप सीधे बैंक से तो नहीं आ रहे?
बिल्कुल ठीक पहचाना भाई, मुझे बैंक में कुछ पैसे जमा करने थे और यहाँ पर भी आना था, तो मैंने सोचा क्यों न बैंक में पैसा जमा करते हुए यहाँ आ जाएं, इससे मेरा समय भी बच जाएगा और दोनों काम भी हो जाएंगे।
भैजी, अभी तो आप शहर में रह रहे हैं और यहाँ पर जगह जगह बैंक मौजूद हैं, लेकिन जब आप गांव में थे तो क्या तब भी आप बचत करते थे?
बिल्कुल करता था।
तो क्या भैजी आपके गांव में भी बैंक था?
गांव में बैंक तो नहीं था, लेकिन बचत करने के और भी कई तरीके हैं।
जैसे?
जैसे कि पुरुष मंगल दल, इसमें गांव के कई सारे पुरुष मिलकर एक दल बना लेते हैं और सभी सदस्य एक निश्चित राशि हर महीने जमा करते थे और जिस सदस्य को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी इकट्ठा की हुई राशि उसे दे देते थे और अगली बार किसी और सदस्य को। इस तरह से ये सिलसिला तब तक चलता रहता था जब तक कि दल के सभी सदस्यों के पास बराबर राशि नहीं पहुंच जाती।
भैजी, ये तो बहुत ही सरल तरीका है पैसे बचाने का।
अच्छा भैजी, क्या हमारी भौजी भी बचत के मामले में कुछ?
अरे अंजलि, तुम्हारी भौजी तो बचत के मामले में मुझसे भी 4 कदम आगे थी।
वो कैसे?
वो तो बचत करने के नए नए तरीके खोजती रहती थी। उसने तो अपना एक महिला मंगल दल बना डाला था जहाँ गांव की कुछ महिलाएं मिलकर अपने बचाए गए पैसों की एक बराबर राशि जमा करती और फिर वो राशि उस महिला को दे दी जाती जिसको पैसों की जरूरत होती। इसके अलावा तुम्हारी भौजी ने तो महिला समूह भी बनाए, इसमें जब किसी सदस्य को पैसे की जरूरत होती है तो उसे पैसे दे दिए जाते हैं और जब नहीं होती तो इकट्ठे किए गए पैसों को बैंक में जमा करवा दिया जाता।
अच्छा भैजी, एक जो स्वयं सहायता समूह होता है ना, उसके बारे में कुछ बताइए।
आजकल स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनका बड़ा चलन है। ये भी महिला मंगल दल और महिला समूह की तरह होते हैं। बस फर्क केवल इतना है कि इसमें शासन और बैंक भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, और इसमें महिलाएं अपने द्वारा जमा किए गए पैसों की मदद से कुछ काम धंधा शुरू कर सकती हैं, जिससे उनकी आमदनी और भी बढ़ जाती है।
और जब आमदनी बढ़ेगी तो बचत अपने आप बढ़ेगी।
अच्छा भाई जी, ये बताइए कि गांव के लोग अपने पैसों का सही इस्तेमाल कहां और कैसे कर सकते हैं?
भाई देखो, एक तो मैंने अभी बताया कि जमा किए गए पैसों की मदद से लोग कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, फिर चाहे पुरुष हो या महिला। अब दूसरा तरीका है, लोग अपने पैसों को प्रॉपर्टी में यानी कि जमीन वमीन खरीदने में लगा सकते हैं।
तो दोस्तों, सुना आपने, अगर आपके आसपास बैंक नहीं है तो भी आप कैसे पैसे बचा सकते हैं
और वक्त पर उसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
दोस्तों, आज हम अपने प्रवासी श्रोताओं को बताने वाले हैं कि शहर में रहकर वो अपने द्वारा बचाए गए पैसों को कहाँ लगा सकते हैं, जिससे उनके पैसे सुरक्षित रहें और उनमें बढ़ोतरी भी होती रहे।
लेकिन ये सब हमारे अगले सेगमेंट काम की बात में।
दोस्तों, इसमें सबसे पहले नाम आता है NSC यानी कि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट का, जिसे आप राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते होंगे।
ये बचत प्रमाण पत्र आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं।
इतना ही नहीं, इस पर आपको 16% वार्षिक की दर से ब्याज भी मिलता है।
और आप राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदने की शुरुआत 500 रुपए से कर सकते हैं, और इन्हें खरीदने की अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये बचत प्रमाण पत्र आपको कम से कम 6 वर्ष की अवधि के लिए खरीदने होंगे।
और सबसे जरूरी बात ये कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र का इस्तेमाल आप ऋण लेने के लिए भी कर सकते हैं।
इसी दिशा में एक और योजना है, नेशनल सेविंग स्कीम
यानी कि राष्ट्रीय बचत योजना। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की जाती है।
इस योजना में आपको ब्याज 9% वार्षिक की दर से मिलता है, और आप कभी भी निवेश किए गए पैसों या फिर इन पर ब्याज की राशि को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन हाँ, नेशनल सेविंग स्कीम के तहत खरीदे गए बचत पत्रों का इस्तेमाल आप ऋण लेने के लिए नहीं कर सकते।
इन्हें खरीदने की शुरुआत आप मात्र 100 रुपए से कर सकते हैं, और इन्हें खरीदने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
दोस्तों, डाकघर की इन योजनाओं में एक और है, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट यानी कि डाकघर समय अवधि जमा खाता। ये स्कीम बिल्कुल बैंक फिक्स डिपॉजिट की तरह है। इस योजना के तहत आप धन को 5 साल के लिए डाकघर में जमा कर सकते हैं। जब ये अवधि पूरी हो जाती है तो ये पैसे आपको ब्याज के साथ वापस मिल जाते हैं।
इसमें जमा राशि पर अगले 5 वर्षों तक 7.5% वार्षिक की दर से ब्याज जुड़ता जाता है। आप इसकी शुरुआत मात्र 200 रुपए से कर सकते हैं, और इसकी भी कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
दोस्तों, डाक विभाग की एक और योजना है, डाकघर आवर्ती जमा खाता। इस योजना के तहत आपको एक निश्चित राशि हर महीने 5 साल तक जमा करवानी होती है। इसकी शुरुआत आप मात्र 10 रुपए से कर सकते हैं। इसमें आपको 7.5 वार्षिक की दर से ब्याज मिलता है।
और अगर आप चाहें तो अपने पैसों को बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट यानी कि सावधि जमा खाता खुलवा कर 5 साल के लिए जमा कर सकते हैं। अलग अलग बैंकों ने इसके लिए अलग अलग ब्याज दर निर्धारित की हुई है।
और यदि आप चाहें तो अपना पैसा शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जितना आपको फायदा हो सकता है, नुकसान होने के चांसेस भी उतने ही हैं, क्योंकि इसमें आपके पैसे की बढ़ोतरी बाजार पर निर्भर करती है।
तो दोस्तों, ये थी वो सारी योजनाएं जिनका इस्तेमाल आप अपने पैसे को सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हैं।
और अगर आप इस संबंध में और भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना सवाल हमें हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं।
नंबर है 9197176782 3।
भाई, मजेदार सेगमेंट तो अब आया है। अंजलि, आज किसकी चिट्ठी पढ़ रही हो?
नरेन, आज हम शामिल कर रहे हैं नरेंद्र सिंह रावत जी की चिट्ठी को, जिन्होंने हमें मौजपुर दिल्ली से चिट्ठी लिखी है।
अच्छा, तो क्या लिखा है नरेंद्र सिंह जी ने?
ये लिखते हैं कि मैं इस समय मौजपुर में रहता हूँ। गांव से शहर आते समय मेरे साथ एक घटना घटी थी। गांव से बस अड्डे तक तो मैं सही सलामत पहुँच गया। बस अड्डे पर मेरे चाचा जी मुझे लेने आने वाले थे, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही मैं पहुँच गया था। मेरे चाचा जी का फोन नंबर मेरे पास था, लेकिन घर का। काफी देर उनका इंतजार किया। फिर उनके न आने पर मैं निराश होकर वहाँ से उनके घर की तरफ निकल पड़ा। उनको ढूंढते ढूंढते मैं काफी आगे निकल गया। इस बीच मेरी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जो काफी देर से मेरा पीछा कर रहे थे। मैं डर गया और घबरा कर तेज तेज चलने लगा। आगे जाकर रास्ता बंद था और सुनसान भी। उन लोगों ने मेरी गिरेबान पकड़कर मेरी जेब से पैसे और गले से चांदी की चेन निकाल ली। मैं बहुत रोया और मन ही मन सोच रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर अचानक मुझे गांव का फोन नंबर याद आया। मैंने गांव में अपने पिताजी को फोन किया और बताया कि पिताजी मैं खो गया हूँ। तब पिताजी ने कहा, बेटे नरेंद्र तुम वहीं पर रहना, मैं चाचा जी को फोन करता हूँ कि नरेंद्र को लेने उस जगह पर पहुँच जाए। बड़ी देर बाद चाचा जी आए। इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ बता पाता मेरी आंखें भर आईं। वो दिन जब भी मुझे याद आता है मैं बहुत दुखी होता हूँ। ईश्वर न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो।
और दोस्तों, नरेंद्र सिंह जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। बस इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने प्रवास से जुड़े अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com। और अब बारी आती है आज के संदेशों की।
मैं नौ रजनी ध्यानी छे और मैं रानी चोरी मजी रहनू। मैं ते अभी 5-6 साल हुए मैं संस्था मजी काम कर दूँ। और मैं संदेश देना चाहूँ, मेरे ननद रंदी देवप्रयाग बा बाजार रंदी मैं 900 तिवार है। मैं अभी नई मकान बनाई तो मैं चाहूँ कि वह जरा आओ हमारा घर, मैं उन्हें बुलाना चाहूँ, ये संदेश देना चाहूँ।
मेरे नाच कुंभ बाला बढ़चे, मैं रानी चौरे रहन छूँ और तो मेरी बुलिन देर दोनों रही है। नाचे उमा दसमाना च और मैं एक संदेश देना चाहना चला गया कि मैं कभी बड़ी गए भी नहीं छू तो मैं बुन चला गया हूँ ताकि ये खादी है। और थोड़ा छह बोन लगी कि मैं बीमा वगैरह जमा कर दूँ तो हम छा बोन कि हम तो बारे में पता हो तो कि कन कन कर दें बीमा वगैरह, तो मैं भी थोड़ा मदद कर दूँ और मैं भी कुछ सीख दूँ।
उर्मिला मेरू नाम और हडम रंदो मैं, मेरे बच्चे दिल्ली में रहता है, मदर डेयरी का धोरन आ मेरे परिवार से वखी रहो तो मेरे बच्चा वक पढ़ दान लिख दान मेरे घर वाला नौकरी कर दान वखी। अच्छा तब हम कभी कभी और जानो हो ना घर ही रहो एक ही। आजकल मैं भैंसू ले आयो तो भैंसा मतलब मेरा नौना खुश हुई हूँ, बड़ुआ लड़का खुश हुई हूँ। अमित बेटा जरा ढंग से पढ़ाई करनी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी और तेरे बुला की पढ़ाई भी अभी होने तैयार है, तेरी बुली कोर्स करनी पर भी ध्यान देनी। और नीलम बेटी जरा ढंग से आनी जानी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी, मेरी तबीयत ठीक है, तेरी दादी भी ठीक है।
तो दोस्तों, ये थे आज के संदेश जिन्हें भेजा था हमारे प्रवासी दोस्तों ने अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के लिए।
और अगर आप भी अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमें अपना नाम और पता हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं।
वही नंबर है 9197176782।
इसके अलावा अगर आपके पास प्रवास के संबंध में कुछ जरूरी जानकारियां हैं तो हमारे कार्यक्रम में उनका भी स्वागत है।
साथ ही आप मिलजुल कर अपना एक प्रवासी क्लब भी तैयार कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ही ऐसे किसी क्लब के सदस्य हैं तो हमें उस क्लब की गतिविधियों की जानकारियां चिट्ठियों और ईमेल के जरिए जरूर भेजिए।
ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
और चिट्ठियों के लिए पता है हमारा, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003। और अंजलि समय कह रहा है कि हमें अपने श्रोताओं से इजाजत लेनी होगी,
इस वायदे के साथ कि अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात।
तब तक के लिए नमस्कार।
शहर की।